हालांकि तुम आपस में दीनी भाई हो। अगर तुम सिर्फ दीन और दीन के कामों में इकट्ठे हो जाओ तो तुम्हारे आपस के ताल्लुकात कितने अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। आखिर तुम्हें ये हो क्या गया है कि दुनिया के कामों में तो एक दूसरे को नसीहत करते हो लेकिन आखरत के कामों में एक दूसरे को नसीहत नहीं करते? तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसको आखरत के कामों में नसीहत की कुदरत तुम रखते ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे दिलों में ईमान की कमी है। अगर तुम आखरत की बुराई और भलाई पर ऐसा यकीन रखते जैसे कि दुनिया की बुराई और भलाई पर यकीन रखते हो तो ज़रूर आखरत को दुनिया पर तरजीह देते, इसलिए कि आखरत तुम्हारे कामों की दुनिया से ज़्यादा मालिक है। अगर तुम ये कहो कि दुनिया की ज़रूरत फौरी है और इसी वक्त दरपेश है और आखरत की ज़रूरत बाद में होगी, तो तुम खुद सोचो कि दुनिया में बाद में आने वाले और हासिल होने वाले कामों के लिए तुम कितनी मुशक्क़त उठाते हो। खेती की मुशक्क़त बर्दाश्त करते हो हालांकि पैदावार बाद में होगी। बाग लगाने में कितनी जाफिशानी दिखाते हो हालांकि फल बहुत सालों के बाद आएगा, वगैरह वगैरह। तुम किस कदर बुरी कौम हो कि अपने ईमान की जांच इन चीज़ों के साथ नहीं करते जिससे तुम्हारे ईमान की मकदार तुम्हें मालूम हो जाए कि ईमान किस दर्जे का तुम में मौजूद है। अगर तुम लोगों को इस चीज़ में शक है जो हुज़ूर पाक लेकर आए तो आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें वादा तरीके से बताएं और वो नूर दिखाएं जिससे तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि हुज़ूर पाक ने जो फरमाया वो हक है। तुम कम अकल और बेवकूफ़ नहीं हो जिसकी वजह से तुमको माजूर समझ लिया जाएगा। तुम अशरफुल मखलूकात हो, कम अकल और बेवकूफ़ नहीं हो। दुनिया के कामों में तो तुम बड़ी अच्छी राय रखते हो और बड़ी बड़ी एहतियातें बरतते हो, ठीक है, दुनिया के कामों एहतियात बरत कर अमल करते हो। फिर क्या बात है कि आखरत के कामों में ना तो तुम समझ से काम लेते हो ना ही एहतियात पर अमल करते हो। तुम्हें ये हो क्या गया है कि दुनिया के ज़रा से फ़ायदे से खुश हो जाते हो, ज़रा से नुकसान से रंजीदा हो जाते हो, मुसीबतें ज़ुबान पर आने लगती हैं, ज़रा सी बात को मसाइब कहने लगते हो, मातम की मजलिसें कायम कर लेते हो, लेकिन दीन की बड़ी से बड़ी बात छूट जाए तो उसका तुम्हें राजी नहीं होता, ना गम ना ही किसी चीज़ पर तुम्हारे चेहरे पर कोई तगैयर आता है। मैं तुम्हारी बददीनी की हालतें देख कर ख्याल करता हूँ कि हक़ के ताला शाना तुमसे बेजार हो गए हैं। तुम लोग आपस में एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हो, हर एक चाहता है एक दूसरे के सामने कोई ऐसी बात यानी हक की बात ना कहे जो उसके दिल को नागवार गुजरे, ताकि वो भी उसके मुतल्लिक कोई नापसंदीदा बात अपनी ज़ुबान से ना कहे। बस दिलों के अंदर ही अंदर ऐसी बातें रखते हो एक दूसरे के, इसमें तुम एक दूसरे के साथ हो, बातें की गंदगियों पर तुम्हारे जाहिर के चमन खिल रहे हैं, और मौत की बात के करने और मौत की याद को छोड़ देने पर सब जमा हो गए हो। काश अल्लाह मुझे मौत दे कि तुम लोगों से मैं राहत पाऊँ और मुझे उन हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के साथ मिला दे जिनके देखने का मैं मुश्ताक हूँ। अगर वो हजरात जिंदा होते तो तुम्हारे साथ रहना ज़रा भी पसंद ना करते। बस अगर तुम में कोई शमाए खैर का बाकी है तो मैं तुम्हें साफ कह चुका हूँ और हक बात तुम्हें सुना चुका हूँ। अगर तुम इस चीज़ को यानी आखरत को जो अल्लाह के पास है तलब करना चाहो तो बहुत ही आसान है, और मैं सिर्फ अल्लाह से तुम्हारे लिए और अपने लिए मदद चाहता हूँ, और मैं मदद मांगता हूँ अल्लाह से तुम्हारे हक में भी और अपने हक में भी। फ़क्त व सलाम अबू दर्दा। अबू दर्दा की डांट यहाँ ख़त्म हो गई। अब ये और करने की बात है कि कितना बेनकाब उन्होंने किया है, ये उस वक़्त सहाबा को डांट रहे हैं। मैंने कहा वो उस वक़्त कह रहे थे कि काश अल्लाह मुझे मौत दे दे, हैं तो वो अच्छा ही हुआ कि सारे ऐसे लोग जो हैं वो चले ही गए, वरना वैसे ही उनको मौत आ जाती हमारे मालों को देख के। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला की डांट बड़े गौर से समझने की चीज़ है। ये उन हजरात पर खफा हो रहे हैं जिनके मुतल्लिक़ ये हम ये समझते हैं कि हम जैसे दीनदार उन जैसे नहीं बन सकते, उनके अहवाल उनके कारनामे हमारे सामने हैं। अगर ये हजरत हम लोगों को, अगर ये हजरत अबू दर्दा हमें देख लेते तो हकीकतन ये उसी वक्त रंज से हलाक हो जाते। इन बातों का जो हम में मौजूद हैं इनका वो तहम्मुल भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, हक ताला शाना उन लोगों पर रहम करे जिनके पास दुनिया अमानत थी, वो इस अमानत को दूसरों के हवाले कर गए और खुद जा बेफिक्र होकर चल दिए। हाँ, तो वो हाजिम रज़ी अल्लाह तआला का इरशाद है कि दुनिया से बचते रहो, क़यामत के दिन आदमी के को हशर के मैदान में खड़ा करके कहा जाएगा ये वो शख्स है जिसने इस चीज़ को बड़ा समझा जिसको अल्लाह ने हकीर समझा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला का इरशाद है कि हर शख्स अपने घर में चंद रोज़ा मेहमान है, इसका मालूम आता मांगी हुई चीज़ है, मेहमान को हर हाल में चंद दिन में अपने घर से यानी आखरत को चला जाना है और मांगी हुई चीज़ बहरहाल वापस करनी होगी। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब हज़ूर पाक सल्लम की बईस हुई तो इबलीस ने लश्कर को तहकीक के लिए भेजा, उन्हें बताया कि एक नबी की बईस हुई है। उसने तहकीक करके कहा कि देखो उस नबी की बईस हुई है तो देखो क्या उनमें दिल की उनमें दुनिया की मोहब्बत है उनकी जिसके पास जहाँ पर वो नबी महबूस हुए। लश्कर ने आके जवाब दिया कि हाँ दुनिया की मोहब्बत उनमें है। इब्लीस ने कहा फिर मुझे इसका राज नहीं है कि वो बुत परस्ती नहीं करेंगे, मैं तीन चीज़ें उन पर मुसल्लत कर दूँगा। नंबर एक, नाजायज तरीके से कमाना। नंबर दो, नाजायज तरीक पर खर्च करना, इसराफ, बेमकसद इसराफ है ना, करोड़ों की डेकोरेशन क्या है ये। हाँ, नंबर तीन, और जहाँ खर्च करने का वाकई महल हो वहाँ खर्च ना करना, जहाँ खर्च करने का वाकई महल है लोग मर रहे हैं वहाँ खर्च ना करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का इरशाद है कि दुनिया के हलाल का हिसाब है और इसके हराम का अजाब। हज़रत मालिक बिन दिनार का इरशाद है कि इस जादूगर से बचो दुनिया से, ये जादूगर उल्मा के दिल पर भी जादू कर देती है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बनू इसराइल को हक़ ताला शानक की बंदगी करने के बावजूद दुनिया की मोहब्बत ने बुत परस्ती तक पहुंचा दिया था। उनका यह भी इरशाद है कि आदमी अपने माल को हमेशा कम समझता है और अपने अमल को हमेशा ज़्यादा समझता है। हज़रत अमीर माविया के पास शहर नजरान के एक बुज़ुर्ग आए जिनकी उम्र 200 वर्ष थी। अमीर माविया ने इनसे दरियाफ्त किया कि इस दुनिया को तुमने बहुत देखा है, कैसा पाया? कहने लगे चंद एक साल आराम के, चंद एक साल तकलीफ के, हर दिन और रात में कोई ना कोई पैदा होता है, कोई ना कोई मर जाता है। अगर पैदा होना बंद हो जाता तो दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाती है, अगर मरना बंद हो जाता तो दुनिया में रहने की जगह न रहती। हज़रत अमीर माविया ने इनसे पूछा कि मुझसे कुछ आपको चाहिए, मेरे काबिल कोई खिदमत है तो आप बताएं, मैं उसको पूरा कर दूंगा। कहने लगे जो उम्र गुजरी है वो वापस आ जाए या मुझे मौत ना आए। अमीर माविया ने कहा ये तो मेरे बस की बात नहीं है। कहने लगे फिर मुझे आपसे कुछ मांगना भी नहीं है। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि हम सब ने दुनिया के साथ मोहब्बत कर लेने पर सुलह कर लिया, जिसकी वजह से कोई शख्स किसी को ना अच्छी बातों का हुक्म करता है ना बुरी बातों से रोकता है। हक़ ताला शाना इस हाल पर हमेशा छोड़े रखे, ये हरगिज़ नहीं होता, ना मालूम किस वक्त अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो। अज़ाब वक्तन फ़क्तन नाजिल होता है लेकिन हम फिर भी उससे फ़ायदा ही नहीं उठाते, हमारी आँखें ही नहीं खुल पाती। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हक़ ताला शाना जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको थोड़ी सी दुनिया देकर रोक लेता है, यानी ज़रूरत की दुनिया होती है बस उसके बाद, और जो शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक जलील होता है उस पर अल्लाह ताला दुनिया को फैला देता है। एक बुज़ुर्ग की दुआ है ऐ वो पाक दांत जो इस पर कादिर है कि आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोक दे, दुनिया को मेरे पास आने से रोक देना। यानी तू इतना बड़ा काम कर सकता है क्योंकि तो तेरे नज़दीक बहुत कम है कि दुनिया मेरे पास आए। अब्दुल्ला भी मुबारक फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों से दिलों को वैशी ना बनाओ, इसलिए अगर दिल वैशी बन जाए तो खैर की बात दिलों तक नहीं पहुंचेगी और दिलों पर किसी अच्छी बात का असर नहीं होगा। वहाँ भी मंबर अहमदुल्ला ने फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया की किसी चीज़ से खुश होता है वो हिकमत के खिलाफ करता है, और जो शख्स ख्वाहिशात को अपनी कदम के नीचे दबा लेता है शैतान ऐसे शख्स के साए से भी डरता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक दीनी भाई को वसीयत लिखी कि दुनिया एक ऐसी कीचड़ है जिसमें पांव फिसल जाते हैं, लिहाजा बच बच कर कदम रखना और पाँव की लगदिश से हमेशा डरते रहना। दुनिया जिल्लत का घर है, इसकी आबादी का मकसद बर्बादी है, इसमें रहने वालों को तन्हा ये कब्र तक पहुंचाती है, इसकी वसत फ़कर की तरफ लौटा देती है, यानी हिर्स बढ़ता चला जाता है और हर चीज़ कम नज़र आती है। ज़ाहिर वसत तो जिनके जाना है, मैं कहा करती हूँ करोड़ों के जो लोग हैं, करोड़ों का जो तो रिस्क वो खा के मरेंगे नहीं, पेट तो छोटा सा ही, उम्र भी छोटी सी है, हैं तो जमा इतना सारे जमा करने की क्या ज़रूरत है भाई, पहले इतना है, जैसे अब शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को भी, हमें हिर्स और हवा में क्यों रहना, हमारे तो बैंक भरे पड़े हैं, हम जाएँ अपना अल्लाह अल्लाह करें, छोड़ें दफ़ा करें, जिन जिन लोगों ने हुकूमत करनी है वो हुकूमत करें, जिन्होंने जो करना है वो करें। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया एक ऐसी चीज़ है कि इसकी वसत फ़कर तक लौटा देती है, हालांकि आम बंदा इस बात को नहीं समझ सकता कि इसकी वसत फ़कर तक लौटा देती है। इसका क्या मतलब है, जब क्या नाम है दौलत ज़्यादा आ रही है तो फ़कर तक कैसे लौटेंगे, हैं? इसका मतलब ये है कि हिर्स बढ़ता रहेगा और हर चीज़ कम नज़र आती रहेगी, और बंदा ये सोचेगा कि मेरे पास कभी कुछ भी नहीं और जमा करो, तो इसकी वसत है, जैसे नबी करीम ने फरमाया कि अगर इंसान के पास एक सोने की वादी, एक जंगल सोने का हो तो दूसरे जंगल की कोशिश करेगा, अगर इंसान के पास दो पहाड़ सोने के हों तो तीसरे की कोशिश करता है। इंसान का पेट नहीं भर सकता, वही फुकर की तरफ लौटता रहता है ना, ठीक है, इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भरती है, इसलिए फरमाया अल्हाकुम मुतकासरो हत्ता ज़ुरतुम अल-मकाबिर, गफलत में रखा तुमको बहुतात की कसरत ने हत्ता की कब्रें जा दी। बस हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो रहो, अल्लाह ताला ने जितना रिस्क अता फरमाया इस पर राजी हो जाओ, अपनी आखिरत से दुनिया के लिए कर्ज ना लो, यानी ऐसी चीज़ें इख्तियार ना करो जिनका बदला आखिरत में अदा करना बड़ा भारी पड़े, ठीक है, इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी एक साए की तरह है जो अनकरीब ख़त्म होने वाला है, और एक ऐसी दीवार की तरह है जो झुक गई है बस गिरने ही वाली है। नेक अमल कसरत से करते रहो और उम्मीदें बहुत कम बांधो। हज़रत याहिया बिन माज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तीन आदमी अक्लमंद हैं, नंबर एक वो जो दुनिया को इससे पहले छोड़ दे कि दुनिया इसको छोड़ दे, नंबर दो वो जो कब्र में जाने से पहले इसकी तैयारी कर ले, नंबर तीन वो शख्स के अपने मौला को इससे मुलाकात करने से पहले पहले राजी कर ले। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को एक ख़त लिखा, हसन बसरी ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को, जिसमें हम्द व सलात के बाद तहरीर फरमाया अमीरुल मोमिनीन दुनिया कूच का घर है। उस वक़्त वो अमीरुल मोमिनीन ऐसे आ गए थे ना, उससे पहले तो सारे के सारे बहुत ही डरते थे, वो ज़माना वो था ना जिसमें बहुत डर था, सारा का सारा दीन मिटा दिया गया था, खारजियों का बहुत इकदार बढ़ गया था और किसी को जरूरत नहीं होती थी, हज़रत अली के ख़िलाफ़ लोग खुलेआम बातें करते थे और कोई हज़रत अली की फेवर करता था तो उसके लिए तो बदशामत ही थी, कतल ही था उसका, समझो एक किस्म का शहीद कर दिया जाता था वो बंदा। तो जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आए तो इन्होंने नए सिरे से इस्लाम को तजदीद नौ किया था, ठीक है, और हज़रत इमाम ज़हरी को खड़ा किया था कि तमाम सुन्नतें और तमाम चीज़ें दोबारा से निकालो, और उन्होंने फिर दोबारा से दीन को नए सिरे से तजदीद दीन की थी, सारी चीज़ें सारी जमा की थी। उस वक़्त जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आए तो किसी ने उस वक़्त ये कहा था अब वो बोलेंगे जो कभी नहीं बोले, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे लोगों ने बेशुमार लोगों ने सिर्फ अपने आप को छुपा लिया था कि कहीं हमारे सीने में जो दीन छुपा हुआ है ये भी ना ख़त्म हो जाए, अगर हमें बोले तो मसलतन छुपाया था कि अगर हम बोले तो ये खारजी और ये सारे हमें ख़त्म कर देंगे, फिर दीन का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। फिर उस वक़्त वो सारे निकले और फिर दोबारा तजदीद दीन हुआ था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में, ठीक है। तो हज़रत हसन बसरी उस वक़्त थे तो उन्होंने ख़त लिखा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को, ठीक है, सलात और हम्द के बाद लिखा, अमीरुल मोमिनीन, ये दुनिया कूच का घर है, ये रहने का घर नहीं है। हज़रत आदम को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया था कि जन्नत में उनसे एक लगदिश हो गई थी और इस सज़ा के तौर पर उन्हें कहा दुनिया में ज़िंदगी गुजारने जाकर, इसलिए इससे डरते रहिएगा, इसका तोशा इसको छोड़ देना है। इसमें गनी वही शख्स है जो ज़ाहिर में फ़कीर है, ये हर वक्त किसी न किसी को हलाक करती रहती है, जो इसको अजीज समझे ये इसको जलील कर देती है और जो इसको जमा करने का इरादा करे ये उसको मोहताज कर देती है। ये एक जहर है जिसको अनजान लोग खाते हैं फिर वो मर जाते हैं। इसमें इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है जैसे ज़ख्मी बीमार हर चीज़ से एहतियात करता है ताकि सेहत नसीब हो जाए। अगर कड़वी दवा इसलिए इस्तेमाल और कड़वी दवा इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि मर्ज तवील ना हो जाए। आप इस मक्कार दगाबाज फरेबी से बहुत एहतियात इख्तियार करिएगा जो महज धोखा देने की वजह से बनती और समझती है और धोखे से लोगों को मुसीबत में फंसा देती है और अपने उम्मीदों के साथ लोगों के यहाँ आती है। बस ये ऐसी बनी ठनी नई दुल्हन बन जाती है कि आंखें इस पर टिक टिकी लगा लेती हैं और आदमी इसके जाननसार बन जाते हैं, लेकिन ये कमबख्त सबके साथ दुश्मनी ही करती है। हैरत है कि ना तो रहने वाले जाने वालों से इबरत पकड़ते हैं और ना बात के आने वालों वाले पहलों का हाल सुनकर इससे एतराज़ करते हैं और ना अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के इरशादात को मानने वाले अल्लाह ताला के इरशादात से ही कुछ नसीहत पकड़ते हैं। धोखे में पढ़कर आखरत को भूल जाते हैं, दुनिया दिल में मशगूल हो जाते हैं और कदम दुनिया उनके दिल में मशगूल हो उनके दिल दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और कदम आखरत के रास्ते से फिसल जाते हैं। ठीक है, फिर नदामत और हसरत के सिवा उनके पास कुछ बाकी नहीं रहता। आखिर में मौत और निजा के कर्ब की बेचैनी इनको घेर लेती है और इन तमाम चीज़ों के छोड़कर जाने की जो हसरतें होती है ना वो उन पर मुसल्लत हो जाती है। इसमें रग़बत करने वाला अपने मकसद को कभी पूरा नहीं कर पाता और मशक्क़त से कभी भी राहत नहीं पाता, यहाँ तक कि बग़ैर तोशा लिए हुए इस आलम से चला जाता है। अमीरुल मोमिनीन, इससे बचते रहिएगा और इसकी नहायत ही खुशी के आयाम में भी अल्लाह से बहुत डरते रहिएगा। इस पर एतमाद करने वाला जब भी खुश होता है दुनिया पर एतमाद, ये किसी न किसी मुसीबत में उसको मुबतला कर देती है। इसमें खुश रहने वाला धोखे में पड़ा हुआ है और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला नुकसान में पड़ा हुआ है। इसकी राहत तकलीफ़ों के साथ वाबस्ता है। इसमें रहने का मनतहा फना है, इसकी खुशी रंज में बदल जाती है। जो कुछ गुजर गया वो वापस आने वाला नहीं और जो आने वाला है इसका हाल मालूम नहीं कि क्या हो। इसकी आरज़ुएं झूठी हैं, इसकी उम्मीदें सब बातिल, इसकी सफाई में गदलापन है, इसके ऐश में मशक्क़त और दिक्कत, वक्त ज़ाया करना है और आदमी इसमें हर वक्त ख़तरे की हालत में होता है। इसकी नेमतें ख़तरनाक, क्यों ख़तरनाक, नेमतों की जवाबदेही करनी है हमने, ठीक है, और इसमें बलाओं का हर वक्त खौफ। अगर हक़ ताला शाना जो इसके खालिक हैं वो इसकी बुराइयों की इतला ना भी फरमाते तब भी इस मक्कार की अपनी हालत ही सोतों को जगाने के वास्ते और गाफलों को होशियार करने के वास्ते काफ़ी थी। चे जाए कि हक़ ताला शाना ने खुद इस पर तंबीहें फरमा दी हैं और इसके बारे में नसीहत फरमाई है कि अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई कदर नहीं, उसने इसको पैदा फरमा कर इसकी तरफ कभी एक नज़र नहीं देखा। इतनी हकीर चीज़ है, ये अपने सारे ख़जानों के साथ हज़रत पाक सम की खिदमत में हाजिर हुई थी। हज़रत पाक सम ने इसको कबूल ना किया इसलिए कि हज़रत पाक ने अल्लाह की मंशा के ख़िलाफ़ को पसंद ना किया और जिस चीज़ से उसके खालिक ने बुग़्ज़ रखा इससे आप सल्लम ने मोहब्बत नहीं की और जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने कीमत गिरा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद करके उसका दर्जा बुलंद नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से इसको कसदन हटा दिया। जो नेक अमल करता है वो कसदन अल्लाह ताला उनको हटा दे और अपने दुश्मनों पर इसकी वसूत कर दी। ठीक है, पेट भरे हुए लोग अल्लाह की तरफ इतने रगबत नहीं करते हैं। कहते हैं ना, पेट जब भर जाता है, मौत भर जाता है, तो उससे एक धुआं निकलता है जो दिल की आँखों को अंधा कर देता है, ठीक है। फिर वो बंदा दुनिया की लज्जत में तो रहता है, शहवत तो ज़्यादा हो जाती है उसमें, लेकिन अल्लाह के लिए वक्त उसके पास नहीं रहता है, ना नमाज, ना कुरान पाक, ना ये, बस रगबत, अच्छा खाना, अच्छा पीना, शहवत, ये घूमना फिरना, ये, ठीक है। 24 घंटों में से एक लम्हा को भी वो अल्लाह को याद नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से इसको कस्तर हटा दिया और अपने दुश्मन पर इसकी वसत कर दी। बाहर धोखे में पड़े हुए लोग इनकी वसत को देखते हैं तो हसरत से देखते हैं, वो इसकी वसत को देख कर कहते हैं अल्लाह ताला ने तो इन पर बहुत करम कर रखा है, और इस बात को भूल जाते हैं कि नबी करीम के साथ अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम किया हुआ था, क्या मामला था उनके साथ, हैं कि पत्थर पेट पर पत्थर बांधने पड़ा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो हमें सब कुछ करके दिखा गए हैं, अपनी आंखें खोलें अमीरुल मोमिनीन, ये एक तंबी है आपके लिए, फकत मसला, ये हसन बसरी तंबी कर रहे हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हम जैसे लोगों को ये तंबी समझो, हम जैसे लोगों के लिए। एक हदीस में अल्लाह ताला का इरशाद है मूसा अलैहिस्सलाम से है कि जब तुम वसत को आते देखो तो समझ लो वो किसी गुनाह के सबब से आ रही है, जब फ़ख्र फाका को आते देखो तो जान लो कि सालेहीन का शौहर है। और अगर ईसा का इतबा करना चाहते हैं तो इनका इरशाद ये है कि मेरा सालन भूख है, यानी भूख में सिर्फ रोटी भी खासी लजीज लगती है, मेरा शौहर अल्लाह का खौफ है, मेरा लिबास सौफ है यानी बोरी, मेरा सर्दी में सेकना धूप है, मेरा चिराग चांद की रोशनी है, मेरी सवारी मेरे पाँव है, मेरा खाना पीना मेवे घास कुदरती चीज़ें हैं, मैं सुबह इस हाल में करता हूँ कि मेरे पास रात के लिए कुछ नहीं होता शाम के लिए, और शाम इस तरह करता हूँ कि मेरे पास रात के लिए कुछ नहीं होता, और सारी दुनिया में मुझसे ज़्यादा बेपरवाह जो किसी का मोहताज ना हो कोई नहीं होता, कोई नहीं है, जब उसका खाना पीना ये सारा कुछ है तो फिर क्या मोहताज हुआ। दरहकीकत आदमी को गौर करने की बात यह है कि इसके तीन ज़माने हैं, एक आलम की इब्तिदा इसकी पैदाइश का ज़माना, दूसरा आदमी के मरने के बाद से हमेशा का ज़माना, इन दोनों के दरमियान में एक तीसरा ज़माना है जो पैदाइश से लेकर मौत तक का वक़्त है। इस मुद्दत को अगर इब्तिदा और इंतहा दोनों के मुकाबले में देखा जाए तो ये एक नहायत ही क़लील सा ज़माना है। इसलिए हुज़ूर पाक का इरशाद है कि मुझे दुनिया से क्या लेना, मेरी मिसाल तो इस सवार की सी है जो सख्त गर्मी में सफ़र कर रहा हो, गर्मी की शिद्दत में कोई सायेदार दरख्त नज़र पड़ जाए और इसके साय में दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के लिए ठहर जाए, फिर उस दरख्त को वहीं छोड़कर आगे चल दें। हज़रत पाक सल्लम ने एक सहाबी को देखा कि चूने से अपने घर की सफ़ेदी कर रहा है, ठीक है। हज़रत पाक ने उसको देखा और फरमाया अल्लाह माफ़ फरमाए, उसे देख के फरमाया मौत तो इससे बहुत करीब है। एक हदीस में हज़रत पाक का इरशाद है कि दुनियादार की मिसाल उस शख्स की सी है जो पानी पर चल रहा हो, क्या कोई शख्स इस बात की ताकत रखता है कि पानी पर चले और उसके पाँव ना गीले हों। सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह ने लंबी उम्र पाई थी, फरमाते हैं तीन आदमी ऐसे हैं जब मुझे उनका ख्याल आता है तो इस कदर ताज्जुब होता है कि मुझे हंसी आने लगती है। नंबर एक वो शख्स जो दुनिया में उम्मीद लगाए बैठा है और मौत उसके पीछे चल रही है। नंबर दो वो शख्स जो अल्लाह ताला से काफ़ी है। नंबर तीन वो शख्स जो मुंह फाड़ फाड़ कर हंसता है, उसे ये पता नहीं कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है या राजी है। इसलिए फुर्सत के इन आयाम में नेक अमल कर लो और हक के ताला से डरते रहो और अपनी लंबी लंबी उम्मीदों से मौत को भूल जाने से धोखे में ना पड़ो और दुनिया की तरफ ज़रा भी तवज्जो ना करो, ये बड़ी धोखेबाज और बेवफा है, हम लोग इसके आशिक बन जाते हैं, इसने कितने ही आदमियों को जो इसमें दिन लगाए बैठे थे भी यारों मददगार छोड़ दिया, इसको हकीकत की निगाह से देखो, ये ऐसा घर है जिसमें मोहल्लकात बहुत ज़्यादा हैं और ख़ुद इसके पैदा करने वाले ने इसकी बुराइयां बता दी हैं। एक हकीम अगर कोई दवाई तजवीज़ कर दे और ख़ुद बता दे इसमें जहर है, इसको एक वक्त इसके इस्तेमाल की सिर्फ ये इतनी ज़रूरत है एक रत्ती से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना है, एक तो हम वही एक रत्ती इस्तेमाल करेंगे देख के कि बाकी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल की तो हमें नुकसान पहुँचेगा। उसने भी बता दिया, ये है तो सही, रहना है, बरतना है, मत सिर्फ दुनिया करनी है, लेकिन एक रोटी के बराबर, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर अगर कोई बेवकूफ एक तोला या दो तोला इसकी खा लेगा तो लामहाला मर जाएगा, और बताने वाले हकीम की इसमें कोई खयानत नहीं होगी, उसने बता दिया, ठीक है, इसमें उसकी कोई वो नहीं, अल्लाह माफ़ कर, हमाकत नहीं है, उसने पहले ही बता दिया, मरा तो बंदा अपने गलती से खुद मरा। इसकी हर चीज़ पुरानी हो जाएगी, यह सलमान फारसी की नसीहत चल रही है। तीसरी नसीहत बता रही हूँ, हजरत अबू दर्दा, उसके बाद हजरत हसन बसरी, उसके बाद यह हजरत सलमान फारसी, उन्होंने ये बताया कि हकीम अगर ये कह देता है और फिर उसके बावजूद हम तोला इस्तेमाल करते हैं रत्ती की बजाय तो मरेंगे हम। इसकी हर चीज़ पुरानी हो जाएगी, इसका मालिक फना हो जाएगा, इसका अजीज आखिरकार जलील होगा, इसकी कसरत दुनिया की कसरत बिल आखिर किल्लत की तरफ पहुंचा देगी, इसकी दोस्ती फना कर देगी, इसकी भलाई ख़त्म हो जाने वाली है। हम लोगों पर अल्लाह ताला रहम करें, अपनी गफलत से हम सब को होशियार करें, अपनी नींद से जगाए, इससे पहले पहले कि ये शोर हो जाए कि फलां शख्स बीमार हो गया, मायूसी की हालत है, अच्छे अच्छे डॉक्टर आए और फिर भी ज़िंदगी की उम्मीद ना रहे, फिर ये आवाज़ें आने लगें कि उसने तो वसीयतें शुरू कर दी, ये लो, ये तो अब पहचानना भी नहीं भूल गया, लो अब तो इसकी ज़ुबान भारी हो गई, अब तो इसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही, अब ये किसी को पहचान नहीं रहा, लो अब तो लंबे लंबे सांस आने लगे, लो अब तो कर्राह बढ़ गई है, लो अब तो पलकें झुक गई हैं, ज़ुबान तुतला गई है, अब कोई बात नहीं कह रहा, भाई बंद रिश्तेदार खड़े रो रहे हैं, ठीक है, कहीं से बेटा आता है, कहीं से बीवी सामने आती है, मगर ज़ुबान कुछ नहीं बोलती, इतने में बदन के अज़ा से रू निकलना शुरू हो जाती है और आखिर रू निकल कर आसमान की तरफ चली जाती है। अजीज़ो क़ारीब जल्दी जल्दी दफनाने की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है, आयादत करने वाले रो धोकर खा पी कर अपने घरों को चले जाते हैं, अजीज़ो क़ारीब रिश्तेदार माल लूटने की फिक्र में लग जाते हैं, मरने वाला अपने माल में फंस जाता है, ठीक है। तो बहस बहुत उमदा चीज़ है वो क्या कि मरने वाला अपने माल में फंस जाता है, अब माल उसके जैसे होंगे, उसकी जजा में वो मुबतला कर दिया जाएगा। ये है हकीकत इस दुनिया की और इस ज़िंदगी की। अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया से महफूज रखे और आखरत के लिए बेहतरीन तोशा तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।